हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। विक्रांत रंधावा तारा के साथ अमन की बचपन की यादें शेयर कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था तारा से बात करने के लिए, तारा के करीब रहने के लिए। तो अब उसे वो मिल गया था, तो वो कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक चपरासी आ जाता है, जो कि बताता है कि अमन सर लौट आए हैं और वो विक्रांत सर को बुला रहे हैं, साथ ही साथ तारा मैडम को भी। कुछ जरूरी उन्होंने जो फाइल्स दी थी वो मंगवा रहे हैं चेक करने के लिए। तारा ने कहा था कि वो बस अभी फाइल रेडी करके लेकर आ रही है। तब तक विक्रांत रंधावा उस चपरासी के पीछे पीछे चला गया था। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, तो इसीलिए वो अमन के पास चला गया था। और जैसे ही उसने अमन के चेहरे को देखा, तो वो उसे पर परेशानी की लकीरें देखकर वो समझ चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। तब विक्रांत ने बातों ही बातों में अमन से पूछ लिया था, क्या हुआ था, कहाँ गए थे तुम, और ऐसी कौन सी मीटिंग थी जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, जबकि तो अच्छी तरह से जानता है तेरी और मेरी कंपनी अब एक होने वाली है और हम एक साथ एक प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कौन सी डील थी जो तुझे अकेले जाना पड़ा। अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विक्रांत को क्या जवाब दे, लेकिन उसने झूठ बोलना सही नहीं समझा था और उसने जल्दी ही विक्रांत को सारी बात बता दी थी। उसने बता दिया था कि वो पुलिस स्टेशन गया था जिसने तारा पर हमला किया था उसे सजा दिलाने के लिए, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि उसका पहले ही खून हो चुका है और पुलिस उसके मर्डर को ढूंढ रही है। जैसे विक्रांत ने ये सुना, वो हैरान रह गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमन उसी की तरह सोचता होगा। अमन भी यही सोचता होगा, जिसने तारा पर उंगली भी उठाई तो वो उसकी जान ले लेगा। खैर, विक्रांत ने खुद को संभाला और बोला था, तो क्या उसका कैसे खून हुआ, उस चोर का तब कुछ पता चला? तब अमन ने कहा था, नहीं, उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। बड़े ही रहस्यमय तरीके से उसे चोर का मर्डर हुआ है। पता नहीं, पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्दी खूनी का पता चल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ खास नहीं मिला है, केवल कुछ धुआं धुआं सा ही दिखाई दे रहा है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही अमन ने धुएं का नाम लिया, विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया था और वो अपने चेहरे पर आए पसीनों को पोंछने लगा था और बोला था, हो सकता है कोई वहाँ पर सिगरेट वगैरह कुछ पी रहा हो, तो इस वजह से सीसीटीवी में धुआं वगैरह आ गया होगा, वरना धुआं भला किसी का मर्डर कैसे आ सकता है। विक्रांत रंधावा ने जानबूझकर एक नॉर्मल इंसान की तरह क्वेश्चन किया था। उसका सवाल सुनकर अमन कुछ देर उसे सोचता रहा था और सोचने लगा था, मैं भी ये रहस्यमय वगैरह की बातें किसके सामने कर रहा हूँ, आखिर मेरे सामने एक मामूली इंसान ही तो है। अब उसे थोड़ा ही नहीं, ये सब काली शक्तियों, जिन भूत प्रेत चुड़ैल के बारे में कुछ पता होगा। ये सोचकर अमन ने अपना सर झटक दिया था और विक्रांत को देखकर कहा था, तुझे खैर तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उसका पता चल जाएगा। तुम ये सब छोड़ो और बताओ क्या क्या किया तुमने मेरी एब्सेंट में और मेरी बीवी कहाँ है, अमन ने शरारती लहजे में कहा था। तब विक्रांत रंधावा ने जैसे ही अमन के मुंह से ये सुना कि मेरी बीवी कहाँ है, विक्रांत को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन वो उस वक्त अमन को बता नहीं सकता था कि उसे कितना बुरा लगा है तारा को उसके सामने अपनी बीवी कहना। तभी विक्रांत ने कहा था, बस कुछ नहीं, मैं मिस्तारा जी के पास ही बैठा था और उन्हें तुम्हारे बचपन के और अपने किस्से सुना रहा था। ये सुनकर अमन मुस्कराने लगा था, बोला था, तूने ज्यादा पकाया तो नहीं ना मेरी बीवी को, ऐसा कहकर अमन हंसने लगा था और जल्दी ही तारा को मिलने के लिए अपने पास बुला लिया था। तारा ने जैसे ही विक्रांत रंधावा को अमन के साथ देखा, तो वो कुछ सोचने लगी थी, क्योंकि किसी और के सामने वो अमन के साथ इतना ज्यादा कम्फर्टेबल नहीं फील करती थी, ये बात अमन भी जानता था। तभी अमन ने विक्रांत को एक डील के बहाने से वहाँ से जाने को कह दिया था। उस वक्त उन दोनों को एक साथ अकेले कमरे में छोड़कर जाना विक्रांत रंधावा को अंदर तक तपा कर रख दिया था। उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, उस वक्त अमन की बात माननी ही थी। तभी उसके जाते ही, विक्रांत के जाते ही अमन ने तारा की कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था और उसके होठों पर लगातार अपने होंठ रख दिए थे और उन्हें शदीद तरीके से चूमने लगा था। तारा अमन के इस कदम पर हैरान रह गई थी और फिर अपने दोनों हाथों को उसने अमन अमन के सीने पर जोरों से पुश कर दिया था और उसे खुद से दूर कर दिया था। तो अमन हैरानी से उसे देखने लगा और बोला था, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों किया? तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जब भी तुम्हें करीब देखता हूँ, बस केवल तुम्हें प्यार करने का दिल चाहता है, अमन ने बड़े ही रोमांटिक होते हुए कहा था। तब तारा ने अमन से कहा, बस बस कीजिए, ये ऑफिस है हमारा, घर या हमारा बेडरूम नहीं है कि आप जब चाहें रोमांस कर सकते हैं। वेल, आप कहाँ गए थे और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको पता है, आपके एब्सेंट में उसे आपके दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना कितना बुरा लग रहा था मुझे, और वो कितना पका रहा था मुझे, कभी ये कभी वो, ये वो। मैं बहुत ज्यादा पक गई थी उसकी बातें सुनकर, तारा ने शिकायती लहजे में कहा था। तब अमन ने कहा, ओहो, आप शायद भूल रही हैं, आप मेरे बचपन के दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं और मेरी बचपन की कहानी की आपको इतनी ज्यादा पकाऊ लग रही थी, अमन ने उसे छेड़ते हुए कहा। तब तारा ने कहा, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उनके साथ। आज के बाद आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे मुझे बात कर जाएंगे, तारा ने अमन को हक करते हुए कहा था। अमन ने भी उसे वापस से बैक हक किया और बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी ऑफिस से थोड़ी दूर पहले तुम्हें छोड़ा था और तुम्हारे साथ इतने में ये हादसा हो गया। तुम जानती भी हो, अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा देता तो मैं क्या करता, अमन ने तारा की फिक्र करते हुए कहा था। तब तारा ने अमन से कहा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और उस चोर को भी मैं पुलिस के हवाले कर दिया है। तभी अचानक से अमन के मुंह से निकल गया था, तुमने तो उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया है। जैसे ही तारा ने ये सुना, वो हैरानी से अमन की ओर देखने लगी थी और बोली थी, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या पुलिस स्टेशन गए थे? तब अमन अपनी बात बदलते हुए, नहीं बच्चा, मैं कुछ और कह रहा था, शायद तुमने कुछ गलत सुन लिया। तब तारा, नहीं नहीं, आप जरूर मुझे कुछ छुपा रहे हैं, प्लीज बताइए क्या हुआ, कहाँ गए थे आप? अब अमन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि गलती से वो अपने मुंह से ऑलरेडी सारा सच तारा को कह चुका था, तो इसीलिए उसने उसे बता दिया था कि वो पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ पर उसे चोर की रहस्यमय तरीके से मर्डर हो गया है। जैसे ही तारा ने ये सुना, वो काफी ज्यादा हैरान रह गई थी और हल्का हल्का डरने लगी थी, क्योंकि तारा को अब अपने आसपास उसे राक्षस के अंश के होने का असर नजर आने लगे थे, क्योंकि वो राक्षस का अंश ही था जो उसके आसपास किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसका मतलब साफ था, उसके कुल देवता ने जो उसे कहा था वो बात सच साबित हो चुकी थी, वो राक्षस का अंश उसके आसपास आ चुका था।
और जैसे ही उस चोर ने तारा को हर्ट करने की कोशिश की, उसे राक्षस के अंश ने उसकी जान ले ली थी। और जब अमन ने उसे बताया कि सीसीटीवी फुटेज में केवल काला धुआं ही दिखाई दे रहा था, तो अब उसका शक बिल्कुल यकीन में बदल चुका था। तारा पूरी तरह से हैरान रह गई थी। तब उसने अमन से कहा, अच्छा अमन सर, वो दो फाइल्स और रह गई हैं, मैं उनका काम और खत्म करके ले आती हूँ और फिर ऑफिस वालों को भी उनके काम समझा देती हूँ, तो मैं चलती हूँ, तब तक आप अपने काम खत्म कीजिए। ऐसा कहकर तारा जाने लगी थी, लेकिन अमन ने उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे हक करते हुए बोला था, मैं तुम्हें ऑफिस सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लेकर आया हूँ, काम करने के लिए नहीं, तो तुम्हें किसी भी काम को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी नौकर से कह दो, वो काम कर लेगा, अमन ने सीधे सीधे कहा था, क्योंकि वो तारा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, उसका दिल उस वक्त बहुत ज्यादा प्यार करने को कर रहा था। तभी तारा ने अमन से कहा था, अमन सर, शायद आप भूल रहे हैं, आपके दोस्त विक्रांत रंधावा की भी यही है और वो किसी भी वक्त हमारे कैबिन में आ सकते हैं, और आपने उन्हें केवल कुछ फाइल्स की डिटेल्स लेने के लिए भेजा है, और अगर इस तरह से उन्होंने हम एक साथ देख लें तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तब अमन ने तारा से कहा, तो क्या सोचेगा वो, यही तो सोचेगा ना, दोनों मियां बीवी आपस में प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को, इतना क्यों परेशान होती हो, इतना क्यों डरती हो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई क्या सोचता है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि मेरी तारा मेरे बारे में क्या सोचती है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपने आँखों के सामने से एक पल के लिए भी दूर नहीं देख सकता हूँ। तब तारा ने अमन से कहा, मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, बल्कि आपके सामने वाले कैबिन में जा रही हूँ, और आप मुझे काम करने दें, और आपको जितना भी मुझे प्यार करना है ना, घर पर अपने बेडरूम में आराम से कर लीजिए, क्या आपको कोई रोक नहीं रहा है? तारा ने भी थोड़ा सा अमन के करीब जाकर उसके होठों के पास शरारत से कहा था, और फिर हल्का अमन के होठों पर लाइट सा किस कर वो वहाँ से चली गई थी। अमन भी तारा की बात सुनकर मुस्कुराने लगा था। तारा सीधी अपने कैबिन में चली गई थी। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस विक्रांत रंधावा के बारे में पता करके रहेगा कि अचानक से ये विकृत रंधावा कहाँ से आ टपका था। रचना पाठक प्रेम पत्थर।